विद्या सागर नहीं होते, नहीं नहीं मंदिर अभी नहीं बनते, बोलिए आचार्य जी विद्यासागर। जो पंचम काल है, अगर चौथो काल हो तो बहुत सहज बात होती। काल का आशय पड़ रहा है इसलिए, पर मंदिर हम बनवा रहे हैं नई नई, और बच्चों के लिए हम पढ़ा रहे हैं काले। उन बच्चों के लिए पहले से मेष का भोजन और धर्म की परिपाटी बिल्कुल खत्म। वो तो बाहर विदेश में जाने की तैयारी में, चाहे एक पुत्र हो, पर अगर हम नए मंदिर बनवाते हैं तो हमारा कहना यह है कि हमारे जो प्रतिष्ठाचार्य पंडित गण हैं उनके लिए प्रतिज्ञा कराना अनुयायी है कि तुम मंदिर बनवाओ, प्रतिष्ठा करवाओ, बेदी प्रतिष्ठा कराओ, भगवान नए नए यहाँ के विराजमान करो, कल्याण करो, लेकिन अपने पुत्र के लिए पहले नंबर पूजन की और मंदिर में दर्शन करके प्रतिज्ञा दिलाओ तो ये काम तुम्हारा सब ठीक है। नहीं तो क्या हो रहा है कि क्षेत्र क्षेत्र पर कोई जाति नहीं मिलती कि विजाति के पूजा कर रहे हैं भगवान, और जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं, नगर नगर ग्राम ग्राम में बड़े बड़े स्थानों में देख रहे हैं, कहते हैं हम पूजा करते हैं, हम बस भगवान का अभिषेक करते हैं, दो शब्द मुख से नहीं निकलते कि कौन सा मंत्र तुम पढ़ रहे हो, अभिषेक का क्या मंत्र पढ़ा जाता है। उठाओ लोटा भगवान के सिर पर डाल दिया, चाहे मूना एक पिटमा हो, चाहे कोई भी पिटमा हो, सबके ऊपर जल ढालते हैं और बस हो गया अभिषेक और हो गई पूजा, भगवान के पांव पकड़ लिए और अपना पसीना भगवान को लगा दिया और कहते हैं हम अभिषेक कर रहे हैं। ये बात जरा कठोर लगेगी आप लोगों के लिए, लेकिन हमने इसलिए कहा है कि आज हमारे बीच में प्रतिष्ठाचार्य पंडित जी भी आए हैं, इसलिए मैंने यह बात के लिए छोड़ दिया, बोल दिया सभा के अंदर। जिन धर्म की क्या महिमा, जिन धर्म कैसा हो, विदेश क्षेत्र के अलकावती नगरी में एक सेठ सुकेत और सुकांता नाम की सेठानी, ये सेठी पे बड़े धर्मात्मा, बड़े दानी, और इसी नगर में एक नामदत्त सेठ रहते थे। नागदत्त से जो ख्याति लाल पूजा भी चाहे धर कर्ण देह लाए, इसे इसके हिसाब से चलते थे। उनने एक ग्राम के नगरी के बाहर एक नाम भवन बनवाया था। एक समय की बात है कि सुकेत सेठ ने विदेश जाने के लिए तैयारी की और पंडित ने सुकेत सेठ के लिए 4 बजे दिन की मुहूर्त बताई, आप घर से निकले 4 बजे दिन को, कहीं रह जाए फिर आगे बढ़े। सुकेत सेठ अपने घर से अपने इष्ट मित्र नौकरों के साथ संपत्ति के लिए बहुत सी लेकर के 4 बजे दिन को प्रस्थान कर देते हैं और जाके नांग भवन में रुक जाते हैं। अब नांग भवन में रात की रुकेंगे, सवेरे प्रस्थान कर देंगे। यानी पंडितों की मुहूर्त भी बहुत अलग की होती है, क्या नक्षत्र निकाल देते हैं। सवेरे होते ही शेतानी ने अपने रथ में तैयारी कर अपने पति के लिए आज आखिरी में भोजन और कराऊं, बहुत सी तैयारी करके पहुंचती हैं। सेठी कहते अब हम प्रस्थान कर रहे हैं, तुम क्यों आई। कहा मैंने सोचा अब कितने दिन में आप आएंगे विदेश से, इस चेंगी में आप ही में भोजन कराऊं, कम में देंगे आप? सेठ ने कहा अच्छा ऐसा है तो एक काम करो, भोजन की तैयारी करो, ताजा भोजन बनाओ। सेठानी ने तत्काल नौकरों से धर्मशाला की सफाई करवाई बढ़िया, और धुलवा के साफ करवा के बढ़िया, भोजन बनाया। भोजन की तैयारी हो जाती है, और जब भोजन का समय होता है तब सेठानी कहती है, हे नाथ, मुनि राजू की चर्या की निकलने का समय हो गया है, कुछ दो मिनट रुक जाए। सेठ ने कहा हाँ, दो मिनट नहीं, दस मिनट रुको, अपने भाग में हो गए, अगर कोई महाराज आ जाएंगे तो अपन आहार नहीं, और बातचीत कर ही रहे थे कि मुनिराज चारण रिद्धिधारी पक्षोपवासी जंगल में से ध्यान करते चले आ रहे हैं। सेठ जी और सेठानी बाकायदा प्रणाम की विधि से और अपने मुख से उच्चारण करने लगते हैं, महाराज पास आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। महाराज की प्रतिज्ञा भी थी, ये 15 रोज में आज हम 16 दिन आहार करेंगे तो नगर के बाहर कहीं करेंगे, नगरी में नहीं जाएंगे आहार के। और आकाश मार्ग से पीछे पीछे देव चल रहे थे कि देखो आज ये इतने तपसी कहाँ है, किसके घर इनका आहार होता है, वह कौन सा पुण्यात्मा जीव है जिसके हाथ से आज इनका आहार। सुकेत सेठ सेठानी ने दोनों ने निरंतर आहार दिया, और उन देवों ने 50-40 कर दिए, 3.5 करोड़ रत्न बरसा दिए उस धर्मशाला में। अब मुनिराज तो अपने जंगल को वापस चले जाते हैं, और सेठ के देखने के लिए सेठ से मिलने वाले और आहार दिया है सेठ ने, तो श्रावक लोग दौड़े दौड़े आ रहे हैं, और सेठ अपने नौकरों को बुलाकर भेजता है नगरी में, सबको लेके आओ, और सबके भोजनों की व्यवस्था हो रही है, और बड़े उत्साह से सेठ सबको परोस रहे हैं। शाम हो जाती है, अब तो सेठ परदेश जाना भूल जाते हैं। सारे रत्न समेट कर और थैलियों में भरकर रख लेते हैं। इतने में नागरत्न सेठ आते हैं, कहते हैं सेठ जी, यह भवन आपको मालूम है किसका है? कहा भाई हाँ मालूम है आपका है, तो ये रत्न हमारे हैं, आप अपने घर मत देते हैं ना, ये रत्न हमारे हैं, हमारे भवन में बरसा रहे हैं देवों ने। उस धर्मात्मा सेठ ने ये नहीं कहा कि मैंने चौका लगाया, मैंने आहार दिए, कुछ नहीं भाई तुमने, और उन्होंने रत्न ले लिए, अपने घर भेज दिए नामदत्त सेठ ने। रात्रि में देवों ने ये रत्न उठा करके और सुकेत सेठ के आंगन में रख दिए। अब सुकेत सेठ के आंगन में रख दिए, तब थोड़े ने वह नामदत्त सेठ फिर राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि हे महाराजा, मैंने यह नाग भवन आपके लिए बनवाया है, और जो भी उसमें धन की प्राप्ति होगी वह सब राज दरबार में आएगी, 3.5 करोड़ रत्न हैं ये आपके, सुकेत सेठ के घर में। राजा ने कहा वह दानी है, धर्मात्मा है, उसके भाग से रत्न बरसते हैं भी उसी के, ऐसे राजा न्यायवंत तो होते थे, पर वह नामदत्त सेठ राजा के पग पकड़ लेता है, विनय करता है, और किसी प्रकार से राजा कुछ सुविधा कर लेता है कि वे रत्न मंगा ही दे। राजा ने सूचना दी कैसे को कभी रत्न राज दरबार में भेज दिए जाए। सुकेत सेठ ने हर्षपूर्वक वे रत्न राज दरबार में भेज दिए। राज दरबार में खजानची को सौंप दिए गए और रात्रि में देवों ने उठाकर कि वे रत्न फिर सुकेत सेठ के घर में भेज दिए। सवेरे प्रात काल सुकेत सेठ राज दरबार में पहुंचते हैं, कहते महाराज वे रत्न तो हमारे कैसे आपने उठवाए थे, वे रत्न कोने धर जाए फिर हमारे घर है, आप फिर का उठवाओ। राजा कहता है सेठ जी आप बहुत धर्मात्मा हो, हमारी नगरी में हम बहुत भूल भूल प्रशंसा करते हैं आपकी, हम धन्य हो गए जो हमारी नगरी में ऐसे धर्मात्मा सेठ हैं। अरे कहाँ वे रत्न हमारे लग रहे हैं, रत्न तो आपके हैं। और सुकेत सेठ को कहा आप तो रखो और प्रशंसा की स्वागत किया। ऐसे राजा होते थे, राजा ऐसे नहीं होते कि आप डुबंते पाने और ले दूजे ददवान। अब इसी प्रकार का राज है, ऐसा ही प्रावधान है। सारे हमारे श्रावक भाई राजा और जितने भी कानून काजा में फंस करके इतनी कोई भी समाज नहीं बिगड़ी जितनी हमारी जैन समाज ने झंडा काला झंडा लगा दिया, जो हमारा पीला झंडा था काला झंडा लगा दिया। सब ने अपनी संस्कृति बिगाड़ ली। मैंने जो पंक्तियां तैर बोली है उन पंक्तियों पर ध्यान दो तो सारा काला झंडा लग गया है। इसलिए भाई उस सुकेत शेर के समान विचार करो। उस सेठ ने तो धर्मशाला में आहार दिया था, तुम नया मंदिर बनवा रहे हो और नए मंदिर में आहार दे रहे हो, साधु तुम्हारे भाग से आचार्य जी विद्यासागर के आशीर्वाद से आपके इस प्रांगण में आए। आप भी इस प्रतिज्ञा के लिए करना कि हम अपने घर के बच्चों के लिए धर्म की किताब पढ़ाएंगे, मंदिर बनवाना जब भी सार्थक है आपका, और हम कभी ऐसे आत्मरक्षण की चर्चा नहीं करेंगे, ये पाप हराहर हत्या है। एक इंद्रिय जीव से पांच इंद्रिय जीव कोई भी होता है, कोई भी जीव अगर अपने हाथ से हतन हो जाए तो वह हिंसा है और हराहर हत्या है। ऐसे काम हमारे लिए करना योग्य नहीं है। हम अगर धर्म करते हैं तो धर्म की किताब भी पढ़ेंगे, और धर्म की किताब पढ़ेंगे तो हमारे दौरे में धर्मात्मा भी आएंगे। इसलिए हमारे लिए ऐसा करना काम उचित है। कथा तो बहुत लंबी है, वह कथा आज नहीं हो पाएगी भैया, आप राखो तो कल कर दें और नहीं राखो तो अपनी कल नहीं बोल दें। बोलो भगवान मान
मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताई जा।
हो गया कि उसने सच को प्राप्त कर लिया, कुछ समझ में आया? ज्ञान की बातें जान लेने से कोई सच्चा होता है या कि वो ज्ञान उसके जीवन में प्रतिफलित हो जाए तब वो सच्चा होता है? उस बेटे के चेहरे पर तेज और उसकी आंखों में प्रसन्नता, और जब पिता के प्रति वो अपनी विनय व्यक्त करता है तब उसका मन गदगद हो रहा है, उसका आंखें भर आई हैं, इससे बड़ी सच्चाई क्या हो सकती है कि मेरे जीवन में मैंने जिस चीज को हासिल कर लिया है मैं उसे अपने आचरण में बदल चुका हूं, मुझे कोरी किताब की सच के बारे में लिखी गई बातें दोहराने का अब मन नहीं होता क्योंकि वे बातें मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन गई हैं। ये है वास्तव में सच को पाना, लेकिन ऐसा तो अपन बहुत मुश्किल है कि कर पाए। चलो सच होने की कोशिश कर लेते हैं, सच्चे होने की कोशिश कर लें, सच को प्राप्त नहीं करें तो। सच्चे होने के लिए भी आठ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कभी भी फिर सच्चा होने के बाद सच्चाई पर संदेह नहीं होना चाहिए। अभी तो हमें झूठ पर उतना संदेह नहीं होता जितना कि सच्चाई पर संदेह होता। ये एक बहुत सहज सी प्रक्रिया है। चारित्रहीन पर चारित्रहीनता का दोष नहीं लगाया जाता, चारित्रवान पर चारित्रहीनता का दोष लगाने की आदत है। सच को झूठ कहने की आदत है, झूठ को झूठ हम कहते ही नहीं। अभी तो हम सच को झूठ कहते हैं, इसलिए पहली जरूरत है कि जहां सच्चाई है, अगर हम सच होना चाहते हैं तो जहां सच्चाई है वहां हम संदेह ना करें। सच के एवज में कोई कितने भी मुझे संसार की धन संपदा दे, मैं उसकी आकांक्षा ना करूं। ऐसा अपन कर लेते हैं कि मैं आपको इतनी धन संपदा दे सकता हूं, आप इस बात को किसी अन्य रूप में कह दें, जैसी है वैसा नहीं उससे विपरीत कह दें, और अपन तैयार हो जाते हैं। अपन झूठ बोलने के लिए तैयार क्यों होते हैं? थोड़े से लालच के पीछे, थोड़ी सी आकांक्षाओं के पीछे, और कोई वजह नहीं। इसलिए सच होने से पहले हमें सावधानी रखनी पड़ेगी कि हम किसी भी तरह की सांसारिक आकांक्षा के चलते और सच को मिस ना कर दें। जो सच्चे रास्ते पर चल रहे हैं या कि सच हैं, उनके प्रति घृणा का व्यवहार ना करें। यह भी हो जाता है अपन से। चौथी चीज, झूठ के रास्तों में बहुत भीड़ होगी, झूठे लोगों के आसपास बहुत सुख संपदा और सुविधाएं देखने में आएंगी, लेकिन मैंने जो सच्चा मार्ग तय किया है, मैंने जो सच्चे होने की शुरुआत की है, मैं उसी रास्ते पर निरंतर बढ़ते चलूंगा। मेरे कदम कभी भी उस भीड़ से या कि उन सांसारिक सुविधाओं को प्राप्त करने वाले झूठे व्यक्ति से प्रभावित नहीं होगा। आज बहुत जल्दी हम उसमें उसे चकित होकर के और मान बैठते हैं कि शायद यही सच्चा रास्ता है। नहीं, सावधानी रखनी पड़ेगी। सच होने के लिए हमने जो मार्ग तय किया है, सच्चाई का मार्ग, झूठ की बहुत सारी, बेईमानी की बहुत सारी प्रशंसा संसार में देखने में आ सकती है, लेकिन मैं उससे प्रभावित नहीं हूं और कभी भी सच्चे व्यक्ति के दोष नहीं देखूंगा। अगर दिख जाएंगे तो कहूंगा नहीं, कहने का मन होगा तो उसी व्यक्ति से धीरे से जाके कहूंगा कि तुम्हारे भीतर ये छोटी सी एक कमी दिखाई पड़ती है, आप सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर कभी कोई सच से चूक जाएगा तब भी हम उसे पुनः सच्चाई के रास्ते पर ही लगाने के लिए प्रयत्न करेंगे और सच्चाई से ही हम प्यार करेंगे। हम अपने जीवन को इस तरह बनाएंगे जिससे कि जीवन से ही सच प्रकट होने लगे। अगर इन 8 बातों का हम विचार रखते हैं तो ही सच्चे हो सकते हैं। कठिन है मामला, लेकिन ये सब भी नहीं हो सकता। चलो, न सच पा सकते हैं न सच हो सकते हैं, बोल तो सकते हैं। आखिरी चीज, अगर वास्तव में हमें अपने जीवन को सच्चा बनाना है तो जरा आदत डालनी पड़ेगी सच बोलने की। लेकिन सच बोलने के लिए भी जरूरी है कि देख लें कि हमारा इंटेंशन क्या है, ये भी सावधानी रखनी पड़ेगी। सच बोलना तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सच क्यों बोल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं दूसरे को चोर कहकर के अपने को साहूकार साबित करने के लिए मैं दूसरे के चोर होने को सच सच जानते हुए बोल रहा हूं? ऐसा होता है कई बार। अपन किसी बात को जान लेते हैं कि सच्चाई ये है, और अवसर आने पर उसे नीचा दिखाने के लिए, उसे दुख पहुंचाने के लिए वो सच्ची बात कहते हैं। इसको जैन दर्शन में सच नहीं कहा। झूठ तो बोलना ही नहीं, लेकिन ऐसा सच भी नहीं बोलना जिससे कि दूसरे पर विपत्ति आ जाए, दूसरे के प्राणों का विघात हो जाए, ये सच की कसौटी है। ऐसा कर सकते हैं क्या अपन? ये भी बहुत कठिन मालूम पड़ रहा है, और आसान कर ले भाई अपन। सत्यम वद प्रियम वद, असत्यम प्रियम या कि सत्यम अप्रियम अपी न वद। सत्य बोले प्रिय बोले, अप्रिय सत्य ना बोले और प्रिय असत्य भी ना बोले। अब इससे ज्यादा और नहीं हो सकता भाई। हाँ, और इससे ज्यादा अगर करना हो तो फिर थोड़ा हो सकता है कि परबदकार कठोर निंद नहीं बचन ऊंचा, बस वो भी इसी में शामिल है। दूसरे के पीड़ा देने लायक कठोर और अशब वचनों का उच्चारण न करें, इतना तो सच्चे होने के लिए सच पाने के लिए करें ही करें, इससे कमती में काम न चलेगा। जैसे मिनिमम क्वालिफिकेशन किसी चीज की होती है, इतनी तो करनी है। दूसरे को पीड़ादायक वचन, कठोर वचन और या कि असभ्य वचन, इन तीनों से भी बच जाएं तो भी पर्याप्त है। थोड़ा सा विचार कर लें कि सत्य और प्रिय वचन क्या है, असत्य और अप्रिय वचन क्या है, प्रिय के मायने क्या क्या है। ऐसा नहीं कि दूसरे को सिर्फ सुनने में जो कर्ण प्रिय है उसका अर्थ प्रिय नहीं है। प्रिय के मायने हैं जो हितकारी है, वो प्रिय वचन है। अपन सामान्य रूप से कहते पाए जाते हैं कि सच तो कठोर होता है। सच कठोर होता है वो अलग बात है, लेकिन कठोरता से कहा जाए ये तो नहीं कहा गया। सच भी कहा जाए पर इस तरह से कहा जाए कि मन में कहीं कोई कलुषता ना हो, कहते समय मन में कोई दुर्भावना ना हो, तब वो कहलाएगा सत्य और प्रिय सत्य। एक छोटी सी घटना आती है इसके बारे में, मैं हमेशा सुनाया करता हूं, और सत्य की एक और कसौटी है कि वो मुक्त करे, इसकी भी एक छोटी सी घटना है, शायद बात समझ में आए। बाकी तो इतना तो सब समझते हैं कि मेरे वचन से दूसरे को पीड़ा ना पहुंच जाए, ये सावधानी रखनी है। असभ्य वचन सब समझते हैं, कठोर वचन सब समझते हैं, उस पर ज्यादा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। जरा सा ये देख लें कि मेरे अपने जीवन को मैं सच पाने और सच होने के लिए मुझे अपने वचन प्रयोग किस तरह से करना है। एक राजा अपना चित्र बनवाता है, तीन कलाकार उसका चित्र बनाने में जुटे हैं। राजा के साथ मुश्किल यह है कि उसके एक आंख में रोशनी नहीं है, आप कुछ और भी कह सकते हैं, मैंने नहीं कहा, आप कह सकते हैं, लेकिन वह भी झूठ माना जाएगा। अब ऐसी स्थिति में कैसे चित्र बनाया जाए? पहले वाले ने सोचा कि अगर ऐसी आंख जिसमें रोशनी ना हो वो बनाई जाए तो भद्दी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए दोनों आंखों में रोशनी है ऐसा बनाना चाहिए राजा का चित्र, और उसने बना दिया। दूसरे वाले ने सोचा कि अरे ऐसे कैसे, जैसा है वैसा बनना चाहिए, अब नहीं है एक आंख में रोशनी तो हम क्या करें, जैसे हैं राजा साहब वैसे ही बनाऊंगा। उसने बना दिया जैसा राजा साहब, क्या एक आंख में रोशनी नहीं है, वैसा चित्र बना दिया। तीसरे वाले ने बहुत होशियारी करी, वो मालूम पड़ जाएगी क्योंकि जीतना उसी को है, कहानी इतनी सी है, अब पहले ही बता दूंगा तो फिर मजा ही खत्म हो जाएगा उसका, कुछ भी नहीं एक मिनट बाद बताऊंगा। हुआ क्या, पहले वाले का चित्र देखा तो राजा ने रिजेक्ट कर दिया कि है तो प्रिय, दोनों आंखें मेरी दुरुस्त बनाई गई है तो प्रिय, लेकिन झूठ है, सत्य नहीं है। दूसरे वाले में है तो सच लेकिन अप्रिय है, ठीक नहीं जान पड़ता। हां, तीसरे वाले के चित्र को देख करके राजा बहुत प्रसन्न हुए, उसने मालूम क्या किया था, उसने बड़ी होशियारी से चित्र बनाया था, राजा की उस दशा का चित्र बनाया था कि जब राजा निशाना साध रहे हैं और छत्री हैं, निशाना लगा रहे हैं, धनुष बाण हाथ में लिए हुए हैं, और निशाना लगाते समय तो एक आंख जो है वो खुली है और एक आंख बिल्कुल बंद होकर के, और राजा साहब निशाना लगा रहे हैं, बताइएगा, सत्य भी है और प्रिय भी है। अब ये तो एक उदाहरण है, हमारे अपने जीवन में भी ऐसे बहुत से अवसर आते हैं जिनमें कि हमारे सामने दुविधा होती है कि हम क्या करें। एक भिलाई में 1983 में आचार्य महाराज के साथ जब हम सब लोग वहीं से विहार करते हुए निकल रहे थे तो एक व्यक्ति ने कहा कि मैं स्टील प्लांट में और इंक्वायरी के लिए मुझे नियुक्त किया गया है, 2000 रुपए मिलते हैं इस बात के लिए कि कोई भी स्टील प्लांट से कोई भी स्टील का एक पीस भी चुरा के बाहर ना ले जा पाए, क्योंकि जो लेबर है वो थोड़े थोड़े से पैसे के लिए और कोई ना कोई स्टील का एक पीस चुरा करके ले जाता है, 5-10 रुपए उसको मिल जाते हैं, तो उस चीज के लिए उसे नियुक्त किया गया। उसने मेरे से आके कहा कि महाराज बहुत दिक्कत होती है, मैं अगर ये लिख दूं कि ये यहां से इतना चुरा के ले गया तो इतने स्ट्रिक्ट हैं स्ट्रीट प्लांट वाले कि वे फिर मेरे उस लिखे हुए को ही ठीक मान करके बिना इंक्वायरी किए और उस को नौकरी से बर्खास्त कर देते। तब मुझे लगता है कि उस व्यक्ति का वो पालन पोषण घर का कैसे करेगा, उसकी नौकरी ही चली गई, तो बहुत दया आती है। मैं जान रहा हूं कि ये चुरा करके ले जाता है हर 2-4 दिन में और 2-5 रुपए 10 रुपए की चीज चुरा के ले जाता है, पर मुझे लगता है कि इसकी गृहस्थी मुश्किल से चलती होगी तब तो ये चुरा के ले जाता है, और अगर मैं ये लिख दूं कि ये चुरा के ले जाता है तो मन नहीं मानता, और दूसरी तरफ मन ये कहता है कि जिस बात के लिए तुम्हें 2000 रुपए मिलते हैं, जिस कार्य के लिए तुम्हें नियुक्त किया है, उस कर्तव्य को तुम पूरा कहां कर रहे हो, कितनी मुश्किल है। तब ऐसी स्थिति में सत्य भी बोलना है और प्रिय भी होना चाहिए, दूसरे के लिए अहितकारी नहीं होना चाहिए। आप बताइएगा कि क्या करें। मैं भी सोच में पड़ गया। फिर मैं रत्नगण श्रापकाचार पढ़ रहा था, उसी दौरान मैंने उनसे कहा कि आप एकाध दिन में मेरे से मिलिए, जरा मुझे सोचने दीजिए, मैं इस मुश्किल में पड़े हुए आपको कोई ठीक ठीक बात कहूं जो कि आगम सम्मत भी हो विरुद्ध ना हो, तो मुझे सोचना पड़े। मैं उसमें पढ़ रहा था तो मुझे उसका तरीका मिल गया कि एक सदगृहस्थ के लिए सत्य बोलने का उपाय घर गृहस्थी के बीच में बहुत आसान है। एक बार वह बोले गए झूठ को क्षमा करे, दूसरी बार वार्निंग दे, और तीसरी बार जो भी उसका पनिशमेंट होता है वो दे दिया जा सकता है। इतनी ही प्रक्रिया, सच मुझे बोलना है, मैं जानता हूं कि ये सच है, सामने वाले ने चोरी करी है, लेकिन अभी मैं अगर सच बोलता हूं तो उसका अहित हो जाए, इसलिए उससे कह दिया कि जाओ, क्योंकि पहली बार तुम्हें हमने ऐसा करते देखा है इसलिए क्षमा किया, अब मत करना। दूसरी बार अगर पुनः वह उसी चीज को कहता और हम जानते हैं कि ये इसने ऐसा किया है, तो हम उसे सिर्फ ये कहते हैं कि ट्वाइस, दो बार हो गया, वार्निंग। अब तीसरी बार अगर वो उसी प्रक्रिया को करता है तो जो सच्चाई है वो हम अब व्यक्त कर देंगे, क्योंकि हम 2 बार उसे वार्निंग दे चुके थे, अब हम उस पर दया नहीं करेंगे। सच हम इस तरह से अपने जीवन में बोल सकते हैं, कठोर फिर भी नहीं होंगे, असभ्य वचन फिर भी नहीं बोलेंगे, दूसरे को पीड़ा देने का हमारा कोई विचार नहीं है, उसे शिक्षा देने के लिए तीसरी बार हमें जो सच्चाई है वो कहनी पड़ी। इतनी सावधानी क्यों रखने के लिए कह रहे हैं? ताकि हमारा अपना जीवन सच्चा बन सके। ऐसा यदि हमारा व्यवहार होता है, ऐसा यदि हमारा सोच होता है, भाव होता है, तो ही हमारा जीवन अच्छा होगा। वरना हम लोगों के साथ मजा यह है कि हम अपने बारे में दूसरा कोई सच बोले ऐसा पसंद नहीं करते, लेकिन दूसरे के बारे में जो कुछ भी सच्ची बात है वो हम कहना चाहते हैं। ये हमारा जो सामान्य रूप से एक आदत में हमारे व्यवहार में आ गया है वो हमारे जीवन को ऊंचा उठाने वाली चीज नहीं है। हम दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या नहीं कर रहा है, दूसरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इससे पहले हम ये देख लें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो ये अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया होगी। सत्य की कसौटी ये है कि वो मुक्त करे। सत्य हमें उलझाता नहीं है, सत्य बोल करके हम मुक्त हो जाते हैं। वही सत्य समीचीन सत्य है जो कि हमें और दूसरे को मुक्त करता हो, बंधन में डालता हो, तकलीफ में डालता हो, वो सच नहीं है। और इतने ही नहीं, सच्चे मन से बोला गया झूठ भी सच है, वो झूठे मन से बोला गया सच भी झूठ है, ये सावधानी रखना। वो बीच में मुझे याद आ गया कि ये पॉइंट तो अपन मिस ही कर जाएंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि खुद तो बहुत झूठे होते हैं लेकिन सच बोलने का दंभ करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति वाकई में भीतर सच्चा है, हम स्वयं सच्चे हैं, फिर हमारे मुंह से जो भी निकल जाएगा वो सच ही होगा। कैसे? क्योंकि वो दूसरे का अहित नहीं कर सकता। और झूठा व्यक्ति तो सच भी बोलेगा तो दूसरे का अहित करने के लिए बोले। इसलिए अपने मन को पहले परख लेना चाहिए कि मेरा मन झूठा तो नहीं है इस सच को बोलते समय। एक राजा ने एक को दंड दे दिया फांसी का, और आखिरी समय जब राजा से मिलवाने के लिए उसे लाया गया कि राजा के सामने आकर के अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ, तो वो तो वैसे ही पहले से भरा हुआ था पूरा, और उसने राजा को गालियां देना शुरू कर दी। लेकिन जो बड़े वाले मंत्री जी थे उनको उस पर बड़ी दया आती थी कि बेचारा निर्दोष है, फिर भी अब क्या करें, अपराधी घोषित हो गया है और राजा ने भी उसे दंड दे दिया, इसको कैसे बचाया जाए। उनके मन में बड़ा ये भाव था। तो जैसे ही उसने आते ही साथ और ये पूछा गया कि आखिरी तुम्हें क्या बात कहनी है, तो राजा को गाली देनी शुरू कर दी। अब वो जिस भाषा में दे रहा था राजा ते कुछ समझ में नहीं आई, तो राजा ने ट्रांसलेट करवाया उनसे बड़े वाले मंत्री से कि क्या बोल रहा है। अब मौका मिल गया उनको, उन्होंने कहा राजा साहब आखिरी समय में आपसे क्षमा मांग रहा है, आपकी बहुत प्रशंसा कर रहा है, अब फांसी तो उसे आपने दे दी है, अगर आप उसे क्षमा कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और उतने में क्या हुआ कि वो जो दूसरे मंत्री बैठे थे जो कि कभी बड़े नहीं बन पाए, हाँ ऐसा होता है, तो ईर्ष्या होने लगती, तो उन्होंने कहा कि अपन को भी मौका मिल गया इनको नीचे गिराने का, ये बड़े बड़े बने फिरते हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं, साफ साफ गाली दे रहा और कह रहे हैं कि ये तो प्रशंसा कर रहे हैं और आपसे क्षमा याचना कर रहे हैं। तो फौरन खड़े होकर के छोटे वाले मंत्री ने कहा कि बड़े मंत्री जी जो है बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, ये तो सरासर आपको राजा साहब गालियां दे रहा है, अब दोनों को ही दंड मिलना चाहिए, इसको तो मिलना ही चाहिए जो गाली दे रहा है, लेकिन जिसने समर्थन किया मंत्री जी बड़े वाले उनको ही मिलना चाहिए। तो राजा साहब ने मालूम क्या कहा, छोटे मंत्री जी दंडित करने योग्य तो आप हैं, मुझे आपका बोला हुआ सच इस समय ठीक नहीं जान पड़ा रहा, बड़े वाले मंत्री जी का बोला हुआ झूठ भी मुझे ठीक जान पड़ रहा है, क्योंकि वे उस निर्दोष व्यक्ति की जान बचाना चाहते हैं, इसलिए मैं उन दोनों को माफ करता हूं और आप जो है जेल चले जाए। आए समझ में? सच क्या चीज है, इससे हम अपने आप तय कर सकते हैं कि जहां दूसरे के प्राणों की रक्षा होती है वो सच है। वाणी से हम हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम बोलें दूसरे के लिए पीड़ादायक वचन ना बोलें, पीड़ा पहुंचाने के लिए इस भाव से ना बोलें, सत्य बोल करके और हमारा मन भी हल्का हो जाए और दूसरा भी अपने आप को हल्का महसूस करे, मुक्त हुआ महसूस करे। वास्तव में तो सच वही है। इसकी भी एक छोटी सी घटना सुनाता हूं, बस फिर बात पूरी हो जाएगी। आज वैसे भी आपने देर किया है, मैंने नहीं किया, फिर भी ऐसे तो नहीं काम चलेगा कि अपन ने खुद देर करी और दूसरे पर थोपें कि आपने कर दी। मैं चाहता तो 5 मिनट बोल करके चुप हो सकता था, क्योंकि समय हो गया, पर ये एक तीस और एक तारीख दो दिन तो ऐसा कंसीडर करना पड़े। मेरे ख्याल से सच तो यही माना जाएगा, क्योंकि ये जिस उद्देश्य से लेकर के आए हैं उसमें थोड़ा बहुत तो। और वो जो मैंने बीच में टोका, मुझे बाद में लग रहा है कि मुझे नहीं टोकना चाहिए था। ठीक है, मुझे मालूम है कि 24 ही बनवाए थे, लेकिन फिर मुझे लग रहा है कि जब वो बोल रहे हैं बात तर तो उनकी बात रह जाती, काय को अपनी बात के लिए मैंने और बोला, पर मुझे बार बार ये लगता है कि क्यों ये प्रचारित किया जा रहा है कि 72 बनवाए थे और उसके चलते आज बहुत तेजी से 3-24 ही बनवाने का जो परंपरा चल पड़ी, मैं इसलिए दुखी होकर के मैंने वो बोल दिया कि सिर्फ भरतेश वैभव में भर मिलता है कि 72 जिनाले बनाए थे। मैंने बहुत लोगों को ये काम सौंपा है और अभी तक वो उनका लेटर मेरे पास आते हैं कि अभी तक भरतेश वैभव के अलावा और किसी आचार्य प्रणीत ग्रंथ में नहीं मिल रहा है कि 72 बनवाए थे, 24 बनवाए थे। अगर 72 बनवाए भी थे तो वे भूत भविष्य तो वर्तमान के बनवाए थे, ऐसा कहीं फिर भी नहीं मिलता। लेकिन आज ये पैटर्न चल पड़ा है कि भूत भविष्य और वर्तमान की 24 ही बनेंगी, इसलिए शायद मेरे मन में ये बात आ गई हो और मैंने बोल दिया तो पंडित जी साहब जो है अन्यथा नहीं लेंगे। उनकी बात भी रह गई कि 72 भरतेश वैभव में लिखे हैं भैया कि हाँ 72 बनवाए थे। अब भरत चक्रवर्ती तो मोक्ष चले गए, अगर मिल जाते तो अपन उन्हीं से पूछ लेते कि भैया काय को आप सही सही बता दो कि कितने बनवाए थे, क्योंकि एक भी दर्शन तो एक के भी नहीं हुए। ऐसा कई बार हो जाता है। मेरा भाव बिल्कुल भी नहीं था कि उनकी बात को मैं अन्यथा करूं, इसलिए मुझे तुरंत उसके बाद लगा कि मुझे नहीं कहना चाहिए था। सत्य वो है जो कि हमें मुक्त करे। मैंने जो बोला उसने मुझे बंधन में डाला, इसलिए मुझे लगा कि सच नहीं। मैं अपने आप को बहुत थोड़ी देर पहले इसे बाइंड अप महसूस कर रहा हूं कि मैंने गलत किया, इसलिए मुझे क्लियर भी करना पड़ा। अपन खुद अपने आंख से कसौटी देख सकते हैं कि बोलने के बाद और फिर हम क्या महसूस करते हैं। एक बहुत सुखद, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, या कि हम बोल करके ऐसा लग रहा है जैसे छाती पर कोई एक पत्थर रख गया। जब हम झूठ बोलते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही मन भारी हो जाता है, और जब हम सच बोलते हैं तो हम आनंदित होते हैं। क्या हुआ कि एक पक्षी पिंजरे में बंद कर दिया गया, उसकी फितरत नहीं थी कि वो पिंजरे में बंद रह के खुश रहे। अपन लोगों की बात अलग है कि अपन शरीर में के पिंजरे में बंद है फिर भी खुश है, लेकिन उस पक्षी की फितरत यह थी नहीं कि उसकी तो उसका नेचर यह था कि वो तो खुले आकाश में ही खुशी महसूस करता था। उसके लिए सोने चांदी के बर्तनों में जिसमें हीरे जवाहरात जड़े थे उसमें बढ़िया बढ़िया चीजें पिंजरे के अंदर खाने के लिए रखी थी, फिर भी वो खुश नहीं था। हां, उसको चाहिए थी स्वतंत्रता, उसे चाहिए थी मुक्ति। एक दिन रास्ते से गुजरते किसी साधु को यह कहते सुना कि जो सच बोलता है वो मुक्त हो जाता है। उसे लगा कि साधु बाबा जी तो सच ही बोलते हैं और ये जो उन्होंने कहा है मुक्ति का उपाय ये बिल्कुल सही है। वो पक्षी इस तरह का था कि बोल के जानता था, जितना उससे सिखा दिया जाता था उतना वो बोलता था, उससे अतिरिक्त नहीं बोल पाता था। लेकिन अब एक दिन ऐसा मौका आया, जिनके यहां पर, जिस राजा के यहां पर पिंजरे में सोने के वो टंगा हुआ था दरवाजे के पास ही, उस राजा से मिलने के लिए दूसरे राजा का एक दूत आया। अब राजा उससे मिलना पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने अपने दूत से कहलवा दिया, रक्षक से कहलवा दिया कि कह दो राजा साहब है नहीं इन दिनों, वे कहीं गए हुए अन्यत्र, मिलना नहीं चाहते। ऐसा झूठ बोलने के लिए कह दिया। पक्षी से रहा नहीं गया, वो वहीं तो टंगा हुआ था उसका पिंजरा। उसने कहा कि राजा जो कहलवा रहे हैं वह झूठ है। वो दूत तो नाराज होकर चला गया, लेकिन ये जो राजा का रक्षक था उसने सीधे राजा के पास जाके कहा कि सारा मामला बिगाड़ दिया उस पक्षी ने। उसने उस दूत के सामने ही कह दिया कि राजा अंदर है और कहलवा रहा है कि वो नहीं है, ये सरासर झूठ बुलवा रहा है। राजा को आ गया गुस्सा, मेरे घर में इतनी सुख सुविधाओं के बीच रहकर मेरे विरुद्ध बोलता है, हटाओ उसको यहां से, उड़ा दो उसको यहां से। और वो तो इसी इंतजार में था, पिंजरे का दरवाजा खोलते ही साथ और ऊपर जाकर मुड़ेर पर बैठ गया और वहां से बोलता है कि साधु बाबा जी ने ठीक कहा था कि सच बोलने से मुक्त हो जाते हैं, मैंने तो एक ही बार सच बोला और मैं मुक्त हो गया उससे। ये अच्छा लगता अपने को ना सुनने में, लेकिन ऐसा करके देखें अपन एकाध बार कि सच बोल करके हो सकता है कि बाहर का बंधन आ जाए लेकिन भीतर के बंधन खुल जाए। अगर हम एक बार ऐसे सत्य को बोलने की आदत डालना शुरू करेंगे किसी भावना के साथ कि हम सबके जीवन में सचाए, हम सच्चे होने का प्रयास करें, उतना ना कर सकें तो 100 मौके दिन भर में झूठ बोल लें कि आए, हम 100 मौके पर ही झूठ बोल दें लेकिन शाम होने से पहले किसी एक व्यक्ति से कह सकें बहुत साहस के साथ कि वो जो सुबह आपसे मैंने कहा था वो झूठ है, मैं स्वीकार करता हूं, सच तो ये है। एक मौके पर, जबकि मैं 100 मौके में 100 में झूठ बोल चुका हूं, एक तो हम कह सकते हैं कि इतना भी स्वीकार कर लें कि मैंने झूठ बोला था, तब भी देखना कि अपने मन को कितना आनंद, कितना संतोष मिलता है कि मैंने कुछ अच्छा किया है। इसी भावना के साथ कि हम ऐसा प्रयत्न करके अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर
के गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह लग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा एक दर्शन करने वाला है। वह शिव के निष्कंटक पद में निष्कंटक होता हूँ, तब शांत निराकुल मानस तुम तक